ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। श्रेष्ठ स्थिति, क्योंकि हमारी स्थिति के आधार से ही हमारा भविष्य का पद मिलेगा। जितनी स्थिति ऊंची है, पद भी ऊंचा है। कहते जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, क्योंकि हमारा सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का, अशरीर बनने का, विधेय स्थिति में रहने का, फरिश्ता बनने का। लेकिन इस लक्ष्य तक जाने के लिए स्थिति हमारी ऊंची चाहिए। जितनी स्थिति ऊंची है उतना हम सेवा भी कर सकते हैं। ऊंची स्थिति से हम सेवा, मनसा, वाचार, कर्मणा एक साथ में कई सेवाएं कर सकते हैं। और जो कई एक समय में कई सेवा करता है उसको प्राप्ति भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वर्तमान समय स्थिति की आवश्यकता है। जिसको भी बाबा ने भी कहा, अनुभवी मूर्त बनो। स्थिति से ही हम अनुभवी बनते हैं। और जो अनुभव की अथॉरिटी है जिसके पास अनुभव का खजाना है, उसके वाणी में बल होता है, दृष्टि में बल होता है। जिसको आचरण करने से अनुभव बनते हैं, आचार्य, आचार्यों की जरूरत है, पंडित की नहीं। पंडित मतलब जिसकी कर्तनी कुछ, करनी कुछ। इसलिए स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए जो हम कहते हैं वो पहले हमारे जीवन में चाहिए। बाबा ने कहा ना, एक एक पॉइंट के क्या बनो, अनुभवी बनो। और अनुभव वाला कभी धोखा नहीं खाएगा, अनुभव वाला सदा खुशी में रहेगा, अनुभव वाला सदा वायुमंडल को भी अच्छा बनाएगा। तो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का, अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का। तो स्थिति को सदा ऊंची बनाने के लिए कुछ बातों की धारणा ही चाहिए, कुछ बातों का पुरुषार्थ करना है। स्थिति बिगड़ती क्यों है उसके भी कुछ कारण है, और उसी को हमें क्या करना है, निवारण करना है। स्थिति बिगड़ने का कारण और निवारण। स्थिति बिगड़ते हैं निगेटिव सोच से, निगेटिव विचारों से। इसलिए बाबा कहते सदा शुद्ध संकल्प चलाओ। जितना हमारे संकल्प शुद्ध हैं, पॉजिटिव हैं, हमारी स्थिति ऊंची है। क्योंकि विचार बीज है। विचार अगर निगेटिव है, भावना निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, व्यवहार निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, सारा खेल विचारों का है। विचार आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर की बीमारियां कब होती है, जो भोजन थोड़ा गड़बड़े वाला मिलता है, तला गया हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, शरीर बीमार होता है। इसी तरह आत्मा का भोजन है विचार। अगर विचारों में कुछ कम ज्यादा हो गई तो आत्मा क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाती है। जिस आत्मा को जैसे विचार मिले वैसे शुद्ध विचार बनने से स्थिति अच्छी बनी, उसके बजाय ईर्ष्या करना के विचार मिले क्रोध उत्पन्न हो गया, काम विकार के संकल्प मिले, भोजन मिला, काम विकार पैदा हो गया। जैसे विचार मिले वैसे बीमारी पैदा होती। इसलिए सदा शुद्ध विचार, पॉजिटिव विचार, जो मुरली की बातें हैं उनके विचार, केवल सुनना नहीं लेकिन सारा दिन उसका चिंतन भी करना है, वैसे चलना भी है। आजकल लोगों को जो दुनिया में भी जो बीमारी हो रही, क्यों हो रहे? विचारों से। आजकल सारे निगेटिव विचार चलते हैं, और जितने विचार, क्योंकि आजकल हर जगह पर निगेटिविटी है, और इसीलिए तनाव टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। तनाव क्या है? मन में विचारों की भीड़। जिसके मन में विचारों की ज्यादा भीड़ होती है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसे कैसे हुआ, जितना ज्यादा विचार चलाएंगे उतना दिमाग गर्म होता है। दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे बीमारी होती। इसीलिए कहते भी है ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव गर्म चाहिए, पेट नरम चाहिए, और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म, विचार ज्यादा। इसलिए अपने विचारों की स्पीड को कम करना। लेकिन विचार स्पीड कब कम होंगे? वास्तव में हमारा जितना भी ज्ञान है, बाबा का जितना ज्ञान है, ये विचारों की स्पीड को कम करके पॉजिटिव विचार करने के लिए ज्ञान है। ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये सब बीच का जो ज्ञान है, इतनी विस्तार से बाबा ने सुनाया। ये सब किस लिए? मन के विचार शुद्ध चले, मन सदा पॉजिटिव सोचे, और जिसका मन पॉजिटिव है वो सदा खुश रहता है। जिसके मन में निगेटिविटी है, जिसका मन ही भारी है, उसकी अवस्था भी बिगड़ गई। तो अपने विचारों पर ध्यान दो, कौन से मेरे विचार चल रहे हैं, कहीं मन की स्पीड तो नहीं बढ़ रहे हैं? जितना जिसके विचार कम, पॉजिटिव, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, शक्ति का अनुभव, सहन शक्ति, सारी शक्तियां गुण कब आएंगी? जब विचार पॉजिटिव चलेंगे। निगेटिव विचार से दुर्गुण आते हैं, पॉजिटिव विचारों से सद्गुण आते हैं। विचारों से वायुमंडल बनता है। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है। जिसके मन में विचारों की स्पीड कम है, जिसके विचार धीमे चलते हैं, उसकी ऊर्जा बच जाती है, और उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है, सारा दिन शुद्ध विचार करो। जिसको बाबा कहते हैं सोमानों में रहो, सोच चिंतन करो। इसलिए विचार जितने पॉजिटिव बनाएंगे, कम चलाएंगे, कुछ भी हो जाए, जो होता है सब अच्छाई के लिए हो रहा है। जितना निगेटिव सोचेंगे और ही दलदल में फंसते जाएंगे। आजकल लोगों को कभी कभी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि विचार ज्यादा चलते। क्रोध आता है विचार ज्यादा चलने से। एक दिन से क्रोध नहीं आता, कई दिनों से उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव विचार चलेंगे, भावनाएं निगेटिव बनेंगी, वृत्ति निगेटिव बनेंगी, तब जाकर के फिर गुस्सा भी आएगा। इसीलिए बाबा कहते शुद्ध विचारों से विकारों पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। अवस्था को ऊंची बनानी है, अपने विचार सदा पॉजिटिव, संकल्प सदा पॉजिटिव। संकल्प से ही सारा कल्प बनता है। अगर संकल्प मेरे पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, सत्युग त्रेता में आएंगे। अगर संकल्प मेरे निगेटिव हैं, भावनाएं निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, तो सत्युग में कैसे जाएंगे? जाएंगे तो भी पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसलिए विचारों पर ध्यान देना है। मेरा कुछ भी चला जाए, संकल्प निगेटिव ना जाए। किसी बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, इतने संकल्प चलाएंगे, तेरे को अकल नहीं, तुमने पहले भी तोड़ा था, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गुस्सा करेंगे, ग्लास फटाफट जुड़ जाएगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है, इसलिए संकल्पों की बहुत बड़ी कीमत है। संकल्प वेस्ट जाने नहीं देना है, संकल्पों को बचाना। जिसके संकल्प मन में ज्यादा निगेटिव नहीं चलते, वही अपने ब्रुकुटी के आसन पर बैठ सकता है, आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकता है, स्वमान में रह सकता है, स्वधर्म में टिक सकता है, वो आत्मानुभूति कर सकता है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। अगर मन में हलचल है, योग में बैठेंगे बाबा नजर नहीं आएगा, बाबा भी नहीं, आत्मानुभूति भी नहीं होगी, अपनी आत्मा की अनुभूति भी नहीं होगी। और मन के निगेटिव विचारों से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, जो ज्यादा सोचता है, उसका मन भी भारी होता है। और जब योग में बैठेंगे, उसी बुद्धि के द्वारा उस परम धाम में रहने वाले परमात्मा को देख नहीं पाएंगे, उसके ऊपर बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाएंगे। इतने दूर में रहने वाले परमात्मा को देखना है, बुद्धि में उसका विजन बनाना है, तो सारा दिन विचार पॉजिटिव, जिसको बाबा कहते हैं बुद्धि को क्लीन रखो और क्लियर रखो। कब क्लीन रहेगी, क्लियर रहेगी? जितने विचार पॉजिटिव चलाएंगे। तो इसलिए संकल्प कम से कम, संकल्प हमारे कम चले उसके लिए कर्मों की गुही गति का ज्ञान। असंकल्प कभी कभी क्यों ज्यादा चलते हैं? कभी हमारे साथ ऐसा कोई दूसरे के द्वारा जब गलत व्यवहार होता है तो हमारे मन में संकल्प चलते, ये मेरे साथ क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हमारा उसका पिछले जन्म का हिसाब देखेंगे, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली तो दो हाथ से बजती है, तो हमने भी कभी उसके साथ कुछ किया होगा। अगर पिछला जन्म उसका दिखाया जाए, आपने क्या क्या किया था, नहीं तो कई कहते अरे मैं इसके रास्ते में तो गया नहीं, मैंने इसका ऐसा किया नहीं, इस जन्म में तो नहीं गए, कभी तो गए होंगे, तब तक आपके आसपास में आया। इसलिए इस कर्म गति का गहराई ज्ञान, जितना कर्म गति का गहराई का ज्ञान होगा, उतना हमारा मन चुप रहेगा, शांत रहेगा। इसलिए संकल्पों को बचाना है। चलो 2 मिनट।
प्रभु
बात चल रही थी अपनी अवस्था को स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का आधार है संकल्प। दूसरी बात है अगर अवस्था को अच्छी बिगाड़ बनाना है, अवस्था क्यों बिगड़ती है उसका कारण है इंद्रियों की अधीनता, कर्मेंद्री की अधीनता। जब हम इंद्रियों के वश होकर के जब कार्य करते हैं तो अवस्था बिगड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी। वास्तव में अवस्था बिगड़ने के लिए हम कभी दूसरों को दोषी बनाते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, ये ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में कारण है हमारी इंद्रियां, इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा ऊंचा पद प्राप्त किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, एक एक इंद्रियों की चेकिंग किया, कौन सी इंद्रिया क्या करती है। लेकिन हमारा इसके तरफ ध्यान कभी, आंखें जो चाहे देख रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मन जो चाहे सोच रहे। इसलिए अवस्था को अगर अच्छी बनानी है, इस किले को मजबूत करने की जरूरत है। ये शरीर हमारा किला है, इस किले को मजबूत अर्थात हर इंद्रियों को जितना श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, कान की जो ड्यूटी है जो सुनना है वही सुने, आंखों की जो ड्यूटी है जो देखना है वही देखे, मन की जो ड्यूटी है वही सोचे, तब जाकर के अवस्था मजबूत होते हैं। जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं सो परिवर्तन करो, सो परिवर्तन। दूसरों को नहीं देखो वो क्या कर रहा है क्या करता है, अपना परिवर्तन। नहीं तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशर बाजी टकेशर खाजा, इस नगरी का राजा सोया है और जो चाहे हो रहा है। और इसे ही आज हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, विघ्नों के लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, विघ्नों के लिए दोषी है हमारी कर्म इंद्रिया। इसलिए रोज इनकी चेकिंग करना है, आंखों ने अपनी ड्यूटी ठीक किया, कान ने अपनी ड्यूटी ठीक किया, मुख ने अपनी ड्यूटी ठीक किया। जब ये गड़बड़ करते हैं तब जाकर के आत्मा की शांति भी क्या हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं। आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। करती गलतियां कर्म इंद्रिया और आत्मा की शांति भंग हो जाती है, अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज इनका दरबार लगाओ, इनकी रोज चेकिंग करो, उनको शिक्षा भी दो ये नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी किया उनको सजा भी दो, इनको ढीला नहीं छोड़ो, इनका रोज दरबार लगा करके इनकी चेकिंग करो। और भविष्य के पद का भी आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हम कितने सालों से ज्ञान में चलते हैं, हमने मम्मा बाबा को देखा ही नहीं देखा, ये कोई मायने नहीं रखता। ऐसे नहीं कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, समर्पित है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है सारा दिन हम अपने इंद्रियों पर शासन कितना किया। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार ऑटोमेटिकली सबको अच्छा लगेगा, कहेंगे माता बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या, उसका अपने ऊपर संयम है, अपने ऊपर संयम मतलब क्या, इंद्रियों पर अंकुश है, वो व्यर्थ नहीं बोलता है, व्यर्थ नहीं देखता है, इसको क्रोध भी नहीं आता। क्रोध क्यों नहीं आता, क्योंकि सब इंद्रियां उसके वश में है। विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सहयोग जरूरी है, जब तक इंद्रियां सहयोगी नहीं बनेंगी तब तक इस दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है। आत्मा चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तपस्या कर रहे, योग लगा रहे, लेकिन इंद्रिया सहयोगी नहीं है, माया जीत नहीं बन सकते, अवस्था को ऊंची नहीं बना सकते। इसीलिए अवस्था को अगर मजबूत बनाना है, स्थिति को श्रेष्ठ बनानी है, रोज 5-10 मिनट इन इंद्रियों की चेकिंग करनी। कैसी चेकिंग करनी है? रोज सवेरे अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से थोड़ा बातें करो। कैसे बातें करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी महावक्य कैसे सुनता, इसीलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन हे कान आजकल तुम गलत बातें भी सुनते हो, व्यर्थ बातें भी सुनते हो, क्या मैंने तुमको इसीलिए बॉर्डर पर रखा है? अगर तुम गलत कुछ सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि शरीर रूपी किले के चारों तरफ से आजकल सीसी कैमरे का प्रबंध किए, इसीलिए कुछ भी व्यर्थ छिप नहीं सकता। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावक के औरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम अपमान वाली बातें किसी को बोल देते हो, किसी का इंसल्ट करते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से दूर हो जाता है, कि मैंने तुमको इसीलिए रखा। अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। आंखें, तुमने 84 जन्म में बहुत सारे, मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, परमात्मा को देखा है। क्या तुमने परमात्मा को देखने के बाद तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने भाषण किया लेकिन आधा दुआ किसको मिलती है? पांव को। हाथ ने कर्म ना सेवा की, आधी दुआ किसको मिली? पांव को, क्योंकि पांव सभी इंद्रियों को उठाकर लेके चलता है। पांव सभी इंद्रियों को उठाकर लेके आता है, इसलिए मुख आया, कान आया। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण कई परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। उसी समय पांव का फर्ज है, हे कान तुमको सुनना है, तुम जाना, मैं नहीं जाऊंगा, राजा ने मुझे मना किया है, मैं आत्मा राजा का सहयोगी हूं। लेकिन पांव भी उसे मिला हुआ है। आज सारी जो गलतियां हुई कारण क्या हुआ? पांव ने कई फिल्में देखी, कई जगह पर चले गए, किसने लेके गए? पांव नहीं लेके गए। इसीलिए पांव तुम्हें व्यर्थ कुछ नहीं देखना, देखेगा मैं तुमको सजा दूं। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वर का गुणगान कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का गुणगान भी करते हो। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और भी कौन सा? केंद्रीय मंत्री है। कहीं भी जाना है तो किसके पास फाइल जाती है? बुद्धि के पास। मुझे इधर जाना है, जाओ या ना जाओ, वो साइन करेगा, निर्णय करेगा, हाँ जाओ, तो सारी इंद्रियां चल पड़ती। तो सारी जितनी गलतियां हुई किसके कारण, किसने परमिशन दी? बुद्धि ने। हे बुद्धि, मैंने तो तुमको विश्वास के साथ केंद्रीय मंत्री बनाया, और मैं तो निश्चिंत था कि तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसी गलत निर्णय किया, मेरी पूरी राजाई चली गई। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे रावण के जेल में डाल दिया, कहीं मेरे विश्वास का फायदा लिया। अगर तुम कुछ आज से गलत कुछ करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। इसको कहते हैं सो परिवर्तन। ऐसा एक ही कि ये अपना परिवर्तन करना है। परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। समय अब दूसरों को देखने का नहीं है, दूसरे क्या करते वो क्या करते, और ही दलदल में फंस जाएंगे, और ये हमारी विकर्म बनते जाएंगे। इसीलिए अपने इंद्रियों से हमें देखते हुए भी नहीं देखना, अपने आप को देखना, अपने में परिवर्तन। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास, ये इतना दिन ज्ञान में चलता है, ये सरेंडर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो अपना ही टाइम वेस्ट हो गया। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपना देखो कि अपने घर के अंदर के ज्ञान में चलते हैं। चैरिटी बिगेंस एट होम, अपने घर परिवर्तन की शुरुआत घर से करो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये शरीर पहला घर है। कान ज्ञान में चलते हैं, आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है, इनको ज्ञानी बनाओ, तब अवस्था अपने आप, अवस्था बिगड़ने का कारण है। थोड़ा सा योग में बैठेंगे, योग में बैठेंगे तो भी क्या करेंगे, आंखें धोखा देती हैं, आंख क्या करते बंद हो जाती हैं। अगर आत्मा की सहयोग है तो आंखें ने तो खुला रहना चाहिए उस समय, इसका मतलब आत्मा की सहयोगी नहीं है। इसलिए हर कर्मेंद्र में इंटरेस्ट चाहिए, बाबा को देखने का, ईश्वरी महावाक्य सुनने का, हर कर्मेंद्र श्रीमद प्रमाण चले, तब ऑटोमेटिकली हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। और जब कोई कर्मेंद्र धोखा देती है उसको सजा भी दो, रात को सोने से पहले चेक करो बुद्धि, ये कान तुम्हारा सारा दिन का चाट कैसा रहा, चलो बहुत अच्छा है 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे तुमने कुछ व्यर्थ बातें भी सुनी थी, कोई एक आया था किसी के बारे में सुना रहा था, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए, तुम्हारे लिए यही सजा है तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। सजा मन कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देने, दोबारा ज्ञान सुनाओ, मुख को पूछो तुमने क्या किया, समझो किसी ने व्यर्थ बोला तुमने तो चुप रहना चाहता, तुमने भी कहा हाँ वो ऐसा करता है इसी करते है, तुम्हारे लिए सजा, तुम्हारा कल का दिन कारोबार बंद रहेगा, मौन। एक एक कर्म इंद्रिय पर निगरानी, नहीं तो कहीं कहते सत्यु कब आएगा, अभी तो 82 वाला साल चल रहा है, बाबा ने तो कहा था कि संगमयुग 100 साल का है, अब इतना साल बाकी है। सत्यु पहले अपने में बनाना है, सत्यु का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, ये गायन है ना, तो इसी तरह क्या मेरा आत्मा का शासन पूरा एक का शासन है, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल है, जब हमारे में सत्युग नहीं आएगा तो बाहर कैसे आएगा। इसलिए हर एक को अपने अंदर सत्युग बनाना है, एक मेरा आत्मा का शासन सबके ऊपर है, तब सत्युग जल्दी आएगा। हमारी कर्मेंद्र हमारी नहीं सुन, कई कहते हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, हमारे घर के सुनते नहीं, प्रकृति सुनती नहीं, क्यों, इंद्रिया सुनेंगे नहीं तो कोई नहीं सुनेगा, जिसकी इंद्रिया शासन में है सारे लोग सुनेंगे। अनुशासन वही कर सकता है जिसने अपने ऊपर शासन किया। अगर स्थिति को ऊंची बनाना है आधार ये है, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, थोड़ी सी अमृत वाला की सारा दिन मन में निगेटिव सोचता है, आंखें इधर उधर देखती है, ये सारी शक्तियां नष्ट कर लेते हैं, पानी भर दिया छेद है खाली। इसलिए हर इंद्रियों से जो शक्तियां वेस्ट हो रही उसको लेके इसको बंद करना, तब अवस्था अच्छी बनेगी। तो पहली तो एक पहली बात बताई संकल्प कम चलाना, दूसरी बताई स्वराज्य अधिकारी स्थिति, तीसरी बात आई अगर अवस्था को अच्छी बनानी है उसके लिए योग का अभ्यास, योग से ही हमारा अवस्था अच्छी बनेगी, योग से, और वो भी विधि पूर्वक योग, ऐसा नहीं कि बैठ तो गए एक घंटा, कितना घंटा है वो घंटा गिनने वाला नहीं है, लेकिन जितना देर बैठे थे मन और बुद्धि बाबा की तरफ थी, नहीं तो कई बाबा के कमरे में बैठे हैं लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहे कहीं हमारा ग्रुप उठा तो नहीं है, कहीं तो चले तो नहीं गए, देख रहे बार बार। अब कई बैठे बाबा के कमरे में सोचे कि चलो आज तो जाने का दिन है, थोड़ा जा करके लिटरेचर से कुछ साहित्य ले लेंगे, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे बाजू में वहाँ गिफ्ट वाला दुकान भी है वहां से भी कुछ ले लेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर सोचेंगे बाहर से जाकर के कुछ खरीदारी भी करेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे अरे वो इतना पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से उधार लेंगे, वहां से लेंगे, वहां जाने के दे देंगे वापिस। अगर ऐसा योग करेंगे तो योग में वो स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए जब भी बैठे ऐसा लगन में मगन होकर के बैठो, जिसको बाबा कहते स्नेह में ऐसे खो जाओ जिससे बैटरी चार्ज हो जाए। अमृत कला योग में बैठेंगे तो भी आंखें बंद हैं। तो अमृत वाला का योग अच्छा, आंखें खोल करके, नहीं तो कई तो बैठ तो जाते हैं, बैठ जाए अगर उसका कोई चुपचाप वीडियो बना करके आपको दिखाया जाए, अमृत वाला का आपका योग का वीडियो, कहते मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, चेयर पे बैठे, मुंह खुला आराम से सो, कई तो आंखें तो खुली हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए एकदम अलर्ट होकर के थोड़ा देर करो, आधा पौन घंटा करो, लेकिन एक्टिव होकर के। अब कई कहते देखते डायमंड हॉल में अमृत वाला योग किया, सब लोग चले गए, वो योग सोया पड़ा, अगर कोई उसको उठाता भी है ना, नहीं और आधा घंटा करके जाऊंगा फिर वो बेहोश स्थिति में बैठा योग खाए। इसलिए ऐसा नहीं है, कितना घंटा बैठे हो मत, जागृत बैठना, जितना जागृत होकर के बैठेंगे, बाबा कहते बच्चे मैं रोज तुम्हारे पास आता हूँ, दिखता है कभी बाबा आता है, घरों में भी आता है हर एक के पास, जहां जहां बाबा के बच्चे वहां आता है, लेकिन बाबा को देखने के लिए कैसे चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर के गटर में पड़ा है, अब कोई जाकर के उसको कहे 10 रुपए ले लो जाकर घर में सो जाओ, वो कहेगा मैं राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब गटर में पड़ा है लेकिन क्या समझता है राजा। इसी तरह हमारे पास भी बाबा अमृत वाला आता है, कहते बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहते, कहते राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमृत वाला देखो कैसे झूमते रहते, कई तो दिन में झूमते, अमृत वाला तो बात ही छोड़। इसीलिए अलर्ट, कई गए तो योग करते करते मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, चांद सूरज तारंगे बाहर जा रहा हूँ, और ऊपर बाबा के नजदीक जा गए, वहां से झुटका लगा दे, गिर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए ऊपर चढ़ रहे तो अटेंशन, इसलिए हमें योग में अटेंशन से बैठना है। तो एक तो अमृत वाला अच्छी तरह योग करना, और दूसरा क्लास के पहले, जब भी मैं देखता हूँ आजकल कई सेंटर पर जाते हैं, मुरली चलती है 7 बजे, योग होता है 6:30 बजे, लेकिन 7 में 10-5 मिनट आए तो भी 2-4 एकादुका आ रहे हैं, मुरली सुनने के लिए सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन आधा घंटे का योग किसने नहीं किया? जो आधा घंटा पहले योग करके मुरली नहीं सुनता, उसको मुरली समझ में नहीं आएगी, मुरली का भाव पता नहीं चलेगा। बाबा ने यहाँ मधुवन की सिस्टम क्या बनाया है, आधा घंटा पहले योग करो फिर बाद में मुरली सुनो, वो मुरली याद भी रहेगी पक्की। नहीं तो ऐसे जो क्लास के पहले योग नहीं करते मुरली सुनते हैं तो पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छा थी, वरदान बता बहुत अच्छा था, वो क्या था, बहुत अच्छा था। दिमाग से निकल गया, क्यों, गरम तवे पर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ से अभी ये परिवर्तन करके जाना, दृढ़ संकल्प, मैं अमृत वाला बहुत अच्छा करूंगा, दूसरा क्लास के पहले जाकर के योग करूंगा, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना, नहीं थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं ये करते हैं, बहाना तो तुरंत बनाते हैं। और साथ में मुरली को सेंटर पर आकर के सुनना, नहीं तो आजकल कई कई क्या करते, कहते बहन जी हमारे घर में बाबा आते हैं आजकल, पीस ऑफ माइंड मुरली में वहां सुनेंगे या फेसबुक में व्हाट्सएप से काम चलाओ, नहीं हमें आकर के सेंटर पर आकर के सुनना है, उसमें ताकत होती है। अगर ये 3 चीजें भी आप अच्छी तरह करेंगे अपनी अवस्था, ये 3 चीजें अवस्था बनाने का आधार है, ये 3 चीजों को परफेक्ट बनाना। अमृत वाला का योग अच्छा, विधि पूर्वक, और जब भी बैठते हैं, चले शाम को योग या एकाग्र होकर के स्नेह से, क्योंकि हमारा बाबा के प्रति स्नेह चाहिए, भावना चाहिए। अगर हमारी भावना ही नहीं तो योग में, क्योंकि योग का आधार है भावना। चाहे शंकर के प्रति, मधुवन के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति भी भावना अगर खराब है तो भी योग नहीं लगेगा। जो टीचर में मुरली सुनाने वाली जो बहन है उसके प्रति भी अगर आपकी भावनाएं निगेटिव है तब भी आपका योग नहीं लगेगा। इसलिए भावनाएं कभी खराब नहीं करना है। जितनी भावना, और भावना कब खराब होती है, जब किसी के दोष देखते हैं, किसी के अवगुण देखते हैं तो भावना निगेटिव बन जाते हैं। इसलिए बामानी स्वयं चुने हुए आत्माएं हैं। हर एक के अंदर कमजोरी तो होती है लेकिन कुछ विशेषता भी होती है। अगर दोष देखेंगे तो भावना निगेटिव बनेगी तो स्नेह प्यार पैदा नहीं होगा, योग नहीं लगेगा। इसलिए योग के ऊपर ध्यान देना है, तपस्या, इसी अवस्था अच्छी बनेगी। चौथी चीज है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जितना ये पहला लेसन पक्का करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहने से अवस्था हमारी अच्छी बनती है। जब हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, देह के भान आत्म में आते हैं, तो फिर हमें दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को सबके अंदर गुण ही गुण नजर आएंगे, किसी की भी बुराई नजर नहीं आएगी। इसलिए हमारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बार बार इस लेसन को, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर भान से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, इस आत्मा के लेसन के ऊपर अटेंशन देना है। बाबा ने इस लेसन को कितना पक्का किया। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को रात को सोया है तो भी उसका योग लगा रहेगा बाबा से, क्योंकि आजकल का मिलन कौन सा है, अव्यक्त मिलन। क्योंकि इतना दिन हम बाबा ऊपर से आते थे, व्यक्त में आते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ता है, हमें यहां से बाबा के पास जाना पड़ता है। लेकिन कौन जा सकता है जो आत्मिक स्वरूप में रहता है। आत्मिक स्वरूप में रहने से ही अव्यक्त में मिलन मना सकते हैं। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है, ठंडी का अनुभव होता है। अब चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसको कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं, वो कितनी ठंडी आ रही है, आ रही, जो जाएगा ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, गर्मी का अनुभव होगा। तो इसी तरह कहते हैं बाबा शक्ति का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है। अगर बाबा के नजदीक कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाबा की वो शक्ति, शांति, आनंद, वो सब अनुभव होगा। तो कहते हैं कुछ साल पहले मैं मधुबन में आया था और मैंने बहनों से बोल बोल करके, बहुत मेहनत करके सोपे के नजदीक जगा लिया था और बाबा का अवतरण गुलजार दादी के तन में हुआ था। चार घंटा बाबा आए थे, मुरली चला रहे थे, मैं नजदीक बिल्कुल बैठा था लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ये ऐसा कैसे हो गया। तो हमने उसको एक बात बताई, अगर कोई एक बड़ा सा चुंबक है, वो चुंबक के चारों तरफ से लोहे के टुकड़े डाल दो तो क्या हो जाएगा, तुरंत खींच लेगा, क्योंकि चुंबक बड़ा है, शक्तिशाली है, तुरंत वो टुकड़े को खींच लेगा। तो इसका मतलब चुंबक बहुत शक्तिशाली, अच्छा है। अगर वही लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट लपेट करके डाल दो, खींचेगा, हिलेगा भी नहीं, इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है लेकिन वो लोहे के टुकड़े किसमें डाले, कपड़े के अंदर लपेट करके डाले, इसीलिए वो खींचेगा नहीं, हिलेगा भी नहीं, इसका मतलब चुंबक खराब नहीं, चुंबक तो अच्छा है। इसी तरह बाबा तो शक्ति, शक्ति का, शांति का, आनंद का सागर है, लेकिन अगर हम आत्माभिमानी बन करके जब बाबा के पास आएंगे, बैठेंगे, तब उसकी अनुभूति होगी। अगर देह के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठे, देह का भान है, तो बाबा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बाबा की अनुभूति करनी है तो हमें आत्मिक स्वरूप में रहने की जरूरत है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। इसलिए आत्मा अभिमानी बनने की जरूरत है। मधुबन में मिलन के लिए एक साल ज्ञान में चलने वालों को बुलाया जाता है। क्यों? एक साल में वो जाएगा सेंटर पे, मुरली सुनेगा, अमृत वाला उठेगा, खान पान की शुद्धता करेगा, पवित्रता की धारणा करेगा, ब्राह्मण बनकर के रहेगा, तब जाकर के थोड़ी आत्मिक स्थिति बनती है। जब आत्मिक स्थिति वाला आकर के बैठेगा उसको फिर वो अव्यक्त बाबा की अनुभूति होगी। इसीलिए अगर मुझे अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, इतना ही नहीं अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, इस आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना है, इसके ऊपर मेहनत करनी है। जो ये आत्माभिमानी की मेहनत करता है वो बाकी सारी मेहनतों से छूट सकता है। स्थिति को ऊंचा बनाने का ये आधार है आत्मिक स्थिति। कोई भी आपके अंदर कड़ा संस्कार है, कोई भी बुरी आदतें हैं, कुछ भी है, अगर किसी के साथ आपकी बनती नहीं, ये समझो अशरीर कोई शक्ति की कमी है, आत्माभिमानी बनो, सारी जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारी समस्या का जड़ है देह का बान, ये काम क्रोध सारे विकार जो आते हैं देह बान में आने से आते हैं। इसीलिए राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आकर के कहते हैं ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तिल लगाओ, नाभि अर्थात देह का भान। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी की मेहनत करो, आत्मा का अभ्यास करो, बार बार स्मृति में रखो मैं आत्मा हूं। आत्माभिमानी स्थिति वालों की अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, उसको अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। आत्मिक स्वरूप में रहने से अति इंद्रिय सुख का अनुभव, और जिसको ये सुख मिलता है संसार की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती उसको। इसीलिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। और लास्ट की एक बात है, कितनी बातें हो गई, पहली बात कौन सी बताई, संकल्प को कम चलाना, संकल्प को बचाना। दूसरी बात कौन सी बताई, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास, इसका दरबार कैसे लगाना भी बताया। तीसरी बात कौन सी बताई, योग का अभ्यास, योग के ऊपर अटेंशन, और उसमें भी खास अमृत वाला क्लास के पहले योग और मुरली को कहां सुनना है, वो तीन बातें, तीन चीजें हमें अवस्था को मजबूत बनाएंगी। और चौथी चीज है आत्माभिमानी की मेहनत। पांचवी चीज है ईश्वरीय महावाक्य, जिसको बाबा कहते श्रीमत। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं अवस्था अपने आप मजबूत बनती है। और श्रीमत कहां से मिलता है, मुरलियों को से। मुझे लगता है भगवान वाच्य जो मिलता है हमें कोई भक्ति मार्ग में भी नहीं मिलता, संगम युग में ही डायरेक्ट बाबा के महावाक्य मिलते हैं। और वो भी किसमें से, जो भी ज्ञानामृत की जो बातें हैं, कोई किताबों की अपनी जो किताब छपे हैं, वो भी डायरेक्ट भगवान वाच्य नहीं, लेकिन डायरेक्ट भगवान वाच्य मुरलियों से। जो कुछ आर्टिकल जो आप पढ़ते हैं वो भी नहीं है, किसी का आप किसी को पूछते भी है, पूछताछ करके वो पूछी हुई बातें भी वो भगवान वाच्य नहीं है, भगवान वाच्य जो मुरलियों के डायरेक्ट पॉइंट्स। अगर किसी व्यक्ति के कहने प्रमाण चलेंगे उसका जिम्मेवार वो व्यक्ति रहेगा या खुद आप रहेंगे, लेकिन बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे उसका जिम्मेवार कौन रहेगा, बाबा रहेगा। इसीलिए हमें कोशिश करके क्या करना है, बाबा के जो श्रीमत है उस प्रमाण चलने की जरूरत है। ने जा बताया, उसने ऐसा बताया, वो मिक्स करके भी बता सकता है कोई। इसीलिए ये तो एक शास्त्रों में अपना एक सीढ़ी में एक चित्र है, सीढ़ी में लास्ट में एक दिखाते हैं एक भिखारी अपने शिराने गीता लिए है और हाथ में कटोरा लिया है, भिक्षा मांग रहा है। वो चित्र सीढ़ी भी किसका दिखाया, भारत का। मैं तो सोचता हूं वास्तव में भारत का भी नहीं, वो चित्र किसका है, हमारा ब्राह्मणों का है, क्योंकि असली गीता किसके पास है? असली भगवान वाच्य सब ब्राह्मणों के पास है, लेकिन वो कहाँ रखा है? शिराने या अलमारी में, कई कई तो पढ़ते भी नहीं, और कटोरा लेकर क्या करे? बाबा योग नहीं लगता मुझे, ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरा ये है वो है, क्योंकि इसकी स्टडी नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा के श्रीमा मूल्यों की स्टडी करो, बाबा ने सारी बातें स्पष्ट की है। इसीलिए मूल्यों की स्टडी जरूरी है। सारी आपके अंदर कोई संस्कार भी है, कोई विकार भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, बाबा ने अलग अलग टॉपिक के पर मुरलियां चलाई है। 69 से लेकर के चाहे अव्यक्त मुरली चाहे साकार मुरलियां, आपके प्रॉब्लम्स क्या है उसी टॉपिक की मुरली पढ़ो, निकाल करके सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, अवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। और मुझे लगता है लिटरेचर में 10-15 रुपए में छोटी छोटी किताबें मिलती है, 69 की मुरली, 70 की मुरली, इन मुरलियों की जितना आप स्टडी करेंगे, पर्सनली पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको, और डायरेक्ट उसके प्रमाण चलो। कोई लोग क्या बोलेंगे क्या उसको सोचना ही नहीं, देखो आपका बहुत अच्छा कल्याण हुआ। इसीलिए बाबा के श्रीमत, इसको कहते श्रीमत, कोई व्यक्ति ने जो बताया वो श्रीमत नहीं हो सकता, लेकिन मुरली का है वो श्रीमत। तो जो मुरली के आधार से चलता है वो शक्तिशाली बनता है। बाबा कहते हैं माया आती क्यों है? जब हम श्रीमत का क्या करते हैं, या श्रीमत में मन मत या परमत मिक्स करते हैं, तब जाकर के माया आती है। इसीलिए अवस्था को अगर मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनानी है, श्रीमत प्रमाण चलना है, श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करना है, और इसकी स्टडी करनी है मुरलियों की। तो ये 5 बातें अगर आप करेंगे तो आपकी अवस्था कैसी बनेगी? मजबूत बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। और जितनी अवस्था है अच्छी है वो एवरेडी है, क्योंकि अचानक कुछ भी होने वाला है। बाबा तो कहते हैं कभी भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इसलिए एवरेडी बनने के लिए अपनी अवस्था को मजबूत बना करके रखो, कभी भी जाने के लिए तैयार, ठीक है। इसलिए 5-6 बातों का अभ्यास। ओम शांति।